दिन भर 12 मार्च रविवार सभी सुनने वालों को निखिल रंजन का नमस्कार। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये नया भारत है।
65% 35 साल से कम उम्र के नौजवानों के सपनों का न्यू इंडिया।
लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत के बाद क्या सोच रहे हैं मुसलमान?
भारत वर्ष में राज करना है इस स्लोगन के साथ सबका विकास दिल बड़ा करें। मुझे 25 साल तक बीजेपी को कोई हिला नहीं सकता सत्ता से।
पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। मणिपुर और गोवा में भी सरकार बनाने के लिए रस्साकशी जारी। खबरें होंगी खेल की भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम में वो नए हिंदुस्तान को देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सत्ता सेवा करने का अवसर होती है, भारतीय जनता पार्टी को इस बात को आगे लेकर चलना है। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर जो विश्वास रखा है, पार्टी उसे कायम रखेगी और जन भावनाओं पर खरा उतरेगी। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बहुमत मिला है। दक्षिण कोरिया की पूर्व राष्ट्रपति पार्क गुनहे ने पद से हटाए जाने के बाद अपने पहले बयान में कहा है कि उन पर लगे आरोपों के मामले में सच सामने आएगा, हालांकि इसमें वक्त लग सकता है। उन्होंने आज राष्ट्रपति का आवास छोड़ दिया। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद उन्हें हासिल विशेषाधिकार खत्म हो गए हैं और उन पर भ्रष्टाचार के मामले में आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है। नए राष्ट्रपति चुनने के लिए मई में चुनाव होंगे। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अरदोगान ने नीदरलैंड से कहा है कि तुर्की के 2 मंत्रियों को रैलियां नहीं करने देने के मामले में जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो बुधवार को नीदरलैंड्स के चुनाव नतीजों का इंतजार करेंगे और उसके बाद अगले कदम पर फैसला लेंगे। वहीं तुर्की के विदेश मंत्री मेवलू चावुशेवलू ने फ्रांस के शहर मेट्स में कहा कि नीदरलैंड्स के राजदूत को तुर्की में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा,
bir kere bunun karşılığı olacak. Bunun altında kalkmayız. Yani özür dilemek yetmez.
इस मामले में हम सही और जरूरी जवाब देंगे। माफी मांग लेना काफी नहीं होगा। हमने तत्काल प्रतिक्रिया दी और बाकी प्रतिक्रिया बाद में सामने आएगी। नीदरलैंड्स के राजदूत ने इसकी योजना बनाई और 2 दिन पहले वो गए थे। हम कह रहे हैं कि उन्हें तुर्की आने की जरूरत नहीं है। जब तक वो खेद नहीं जताते, हम कदम उठाते रहेंगे। जो कुछ हमारी तरफ से किया जाना चाहिए, उसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये मामला ले जाएंगे। हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। ये थे तुर्की के विदेश मंत्री के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा के करीब मलबे के ढेर के ढहने से कम 15 लोगों की मौत हो गई। मलबे के ढेर में कई अस्थायी तौर पर बने घर दब गए। इनमें रहने वाले कई लोग अब भी लापता हैं। मलबे के ढेर में दबे लोगों की तलाश के लिए अभियान जारी है। चीन के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीते साल की उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले लोगों को जेल भेजना था। संसद में पेश की गई रिपोर्ट में देश के मुख्य न्यायाधीश जो चियांग ने कहा कि उनके मुताबिक जो लोग देश की सुरक्षा के लिए खतरा थे, उन्हें सख्त सजा दी गई। इनमें वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता जो शिफंग शामिल थे, जिन्हें बीते साल अगस्त में 7 साल की सजा सुनाई गई थी। जो चियांग ने कहा, हमने देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अपराधों के लिए कड़ी सजा सुनाई। हमने जो शिफंग जैसे मामलों को अंजाम तक पहुंचाया। हमने देश की राजनीतिक स्थिति और लोगों की सुरक्षा के लिए हिंसक चरमपंथ को दंडित किया है। ये थे चीन के मुख्य न्यायाधीश के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। नाइजीरिया की पुलिस के मुताबिक सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 2 संदिग्ध आत्मघाती महिला हमलावरों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक ये दोनों रात के वक्त माइदुगरी शहर में दाखिल होने की कोशिश में थी। पुलिस के मुताबिक हमलावरों की उम्र करीब 18 साल थी। आत्मघाती बम के इस्तेमाल करने के पहले ही सुरक्षा बलों ने उन्हें गोली मार दी। यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने के मामले के ब्रिटेन के प्रभारी मंत्री डेविड डाविस ने कहा है कि इस मामले में होने वाली बातचीत आसान नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन दोनों ही एक अच्छा समझौता करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बातचीत किसी समझौते के बिना खत्म हो, इसकी संभावना बेहद कम है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिनभर में आपका स्वागत है। आज आपके साथ निखिल रंजन। भारत के 5 राज्यों में चुनाव की सरगर्मी खत्म हो चुकी है, लेकिन सरकार बनाने की कवायद तेज है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में बड़ी कामयाबी हासिल कर जीत के नायक बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में विजय जुलूस निकाला। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नेताओं का काफिला ली मेरिडियन होटल से बीजेपी मुख्यालय तक पैदल ही चलकर आया। बीजेपी मुख्यालय में इस कार्यक्रम पर नजर रखी है बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ने, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। नितिन, स्वागत है आपका। क्या कुछ हुआ है आज शाम बीजेपी मुख्यालय में, बताइए।
देखिए, आज सुबह से ही करीब 10:30-11 बजे से ही बीजेपी मुख्यालय में न सिर्फ स्थानीय नेताओं का पर दूर दराज से जो भाजपा के नेता है उनका आना जाना शुरू हो चुका था। जबरदस्त तैयारियां की गई थी। पार्टी के पीछे का जो बड़ा लॉन है, काफी बड़ा लॉन है, वहां पर बड़ा तंबू कनात लगे थे, खाने पीने की व्यवस्था थी लोगों की, और भव्य एक तरह से आयोजन बना के रखा बीजेपी ने, जैसे आमतौर पर बीजेपी करती है इस तरह के मामलों पर। और पहले नरेंद्र मोदी जब ली मेरिडियन होटल से चलते हुए वहां पर पहुंचे तो लोग चौंके, हाथ हिलाते हुए, दोनों तरफ समर्थक थे। उसके बाद अमित शाह जो पार्टी अध्यक्ष है उन्होंने वहां पर स्वागत किया नरेंद्र मोदी का, साथ में गृह मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। और सबसे पहले अमित शाह ने पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करते हुए ये कहा,
ये 5 राज्यों के चुनाव प्रचार में मैं जब घूमा तब मैंने देखा है फटेहाल कोई वृद्ध आदमी हो, कर्ज में डूबा हुआ किसान हो, या जिसको अपने भविष्य की मालूमात नहीं है ऐसा गरीब बच्चा हो, सबकी नजर में मैंने नरेंद्र मोदी के लिए श्रद्धा और अपनी आशाओं को जोड़ा हुआ देखा।
तो
मित्रों,
तो निखिल जैसा
मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है।
तो निखिल जैसा अमित शाह कह रहे थे कि एक तरह से उन्होंने नरेंद्र मोदी को लोगों के मन में देखा, लोगों की बातों में, भावनाओं में देखा, लेकिन नरेंद्र अमित शाह जो है वो इस बात को भी जरूर दोहराते गए नरेंद्र मोदी को भाषण देने के लिए, न्योता देने के पहले, कि एक तरह से ये जो विजय है इसके लिए काफी सोची समझी अच्छे तरह से तैयारी की गई रणनीति थी भाजपा की। लेकिन जब नरेंद्र मोदी बोलने आए तो उसके बाद नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले जो प्रमुख बातों पर बात की, उन्होंने सबसे पहले एक नए भारत की बात की जो काफी दिलचस्प है।
65% 35 साल से कम उम्र के नौजवानों के सपनों का न्यू इंडिया। अभूतपूर्व रूप से जागरूक महिला समूहों का सपनों का न्यू इंडिया। ऐसा न्यू इंडिया जो देश के गरीबों में कुछ पाने की इच्छा के बजाय कुछ करने की इच्छा के लिए, अवसर के लिए खोज, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है।
तो ये निखिल जैसा नरेंद्र मोदी ने कहा, एक तरह से विक्ट्री स्पीच थी उनकी, जीत की स्पीच जो होती है। और जैसा आपने सुना कि वो एक नए भारत, युवाओं की बात कर रहे थे, और जाहिर है ये उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ है वो एक तरह से युवाओं पर फोकस करके चुना है, लड़ा है मोदी ने, डेवलपमेंट पर करके चुना है। लेकिन उसके साथ साथ जो उन्होंने भाषण दिया उसमें उन्होंने मिडिल क्लास जो है उस पर काफी जोर दिया, लेकिन उससे भी ज्यादा जोर दिया उन्होंने गरीबों पर। और उन्होंने कहा कि भारत की जो शक्ति है वो दरअसल गरीब लोग हैं, जो किसान लोग हैं। और एक तरह से उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन जो था वो बहुत ही इमोशनल इशू था उनके लिए, लेकिन उनके विकास के जो भाषण था, जो 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 उसका हिस्सा था, वो पहले अपने श्रोताओं को सुनाते हैं।
इस देश में इमोशनल इश्यूज पर चुनावों पर वेव भी दिखाई दिए हैं, चुनाव के ऊपर उसका प्रभाव भी दिखाई दिया है, लेकिन इमोशनल इश्यूज के सिवाय विकास एक कठिन से कठिन मुद्दा होता है, चुनाव का बहुत मुश्किल मुद्दा होता है। सब राजनीतिक दल पिछले 50 साल से इन मुद्दों को लेकर के जाने से कतराते रहे हैं, और कभी उपयोग भी किया है तो एक पासिंग रिमार्क के रूप में किया है। इस चुनाव का उस दृष्टि से भी मूल्यांकन होना बहुत जरूरी है कि इमोशनल इश्यू न होने के बावजूद भी इतना भारी मतदान होना, विकास के मुद्दे पर देश का गरीब से गरीब व्यक्ति भी मतदान के लिए आगे आना, एक नए हिंदुस्तान के दर्शन हो रहे हैं मुझे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि एक नए हिंदुस्तान के दर्शन हो रहे हैं। नितिन श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। और नितिन, और भी क्या कुछ अहम बात कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने?
निखिल जो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के दर्शन हो रहे हैं, उसके साथ साथ जो सबसे खास बात मैं यहाँ पर जरूर बताना चाहूंगा वो ये है कि जाहिर है मोदी ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा किया, तमाम लोगों का, वोटरों का शुक्रिया अदा किया, लेकिन जो पिछले 2-2.5 सालों में जो विवाद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को लेकर और तमाम राज्यों में प्रशासन को लेकर, मुझे लगता है कि कहीं एक तरह से पहली बार नरेंद्र मोदी ने खुलकर आज इस उस बारे में जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम नए हैं और हमें तजुर्बा हो सकता है दूसरों से कम हो और ये हो सकता है कि हमसे कोई गलतियां हुई हों, लेकिन हमारी मंशा जो है वो खराब नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अहम बात रही है नरेंद्र मोदी के भाषण की। निखिल
जी, नितिन, हमारे साथ समीर आत्मज मिश्र भी जुड़ रहे हैं लखनऊ से। समीर, स्वागत है आपका। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो मुख्यमंत्री कौन होगा उत्तर प्रदेश में, ये जो यक्ष प्रश्न है वो अभी बना हुआ है और उसका अभी तक कोई संकेत या कोई क्या जवाब मिल पाया है? समीर
जी, निखिल, आपने जैसा कहा कि यक्ष प्रश्न बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है बना हुआ है। अभी भी संसदीय बोर्ड की आज जो बैठक कभी होने वाली है उसमें इस बात पर चर्चा की जाएगी, जो तमाम नाम है और जो तमाम नाम अभी लोगों की ओर से उछाले जा रहे हैं, पार्टी की ओर से तो किसी तरह का कोई नाम नहीं दिया गया, कोई संकेत भी नहीं दिया गया है, लेकिन ढेर सारे नाम जो चल रहे हैं और जिनको संभावित नाम है कि इनको बनाया जा सकता है, उन नामों पर या दूसरे भी नामों पर संसदीय बोर्ड की बैठक में इस बात पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद संभावित है कि शायद 15 या 16 तारीख को विधायक दल की बैठक, जो नए चुने गए विधायक है पार्टी के, उनकी लखनऊ में बैठक होगी और उसी में इस बात का जो स्पष्ट तरीके से इसकी घोषणा की जाएगी कि किसको बनाया जाएगा। बाकी अगर नाम की देखा जाए तो नाम चुनाव से पहले या जो एग्जिट पोल आए थे या आप कह लीजिए चुनाव से पहले ही, जब भारतीय जनता पार्टी ने किसी को भी मुख्यमंत्री नहीं घोषित किया, तो कयास तभी से लग रहे हैं कि किसको किया जाएगा। कभी योगी आदित्यनाथ की बात आती है और गृहमंत्री राजनाथ सिंह की बात आती है, उसके अलावा जो रेल राज्य मंत्री है मनोज सिन्हा उनकी बात आती है, ये अभी भी मुख्य दावेदारों में है। इनके अलावा भी जो अगर कहा जाए कि दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक जो तमाम नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चल रहे हैं और हम लोगों ने भी उसका एक दो बार जिक्र किया है अपने कार्यक्रम में भी और अन्य जगहों पे, श्रीकांत शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, प्रवक्ता हैं और मथुरा से भी चुने गए हैं विधायक, उनके नाम की भी चर्चा कई लोग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अभी ये सारे नाम जो है चर्चा में ही है और पार्टी इन्हीं नामों पर चर्चा करती है या उसके अलावा भी उसके पास नाम है, ये संसदीय बोर्ड की जो बैठक हो रही है उसमें ये पता लगेगा।
बहुत शुक्रिया समीर आत्मज मिश्र से पूरी जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बड़ी जीत का विश्लेषण करने में लोग अभी जुटे हैं और कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया था और ऐसे में लोगों की दिलचस्पी ये जानने में भी है कि यूपी के मुसलमान बीजेपी की इस जीत पर क्या सोचते हैं। हमारे सहयोगी विनीत खरे पुराने लखनऊ के उस इलाके में पहुंचे जहां बड़ी संख्या में मुसलमान रहते हैं। उन्होंने वहां स्थानीय लोगों और वरिष्ठ पत्रकार कुलसुम से बात कर जानना चाहा कि ये जो कौम है, ये जो लोग हैं, वो नई सरकार के बारे में क्या सोचते हैं।
मैं हूं विनीत खरे और हम इस वक्त हैं पुराने लखनऊ में कुछ लोगों से बात करने के लिए, खासकर जो मुस्लिम मतदाता हैं जिनकी संख्या यहां पर काफी साइजेबल है, उनसे बात करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से इस बार मुसलमान विधायक हैं उनकी संख्या गिरी है, पहले 60 से ज्यादा थी और इस बार 24 तक सिमट कर रह गई है और एक ऐसी पार्टी सत्ता में आई है जिसने एक भी मुसलमान कैंडिडेट नहीं था। क्या सोचते हैं यहाँ पे लोग? क्या नाम है आपका?
शाहिला।
ये जो रिजल्ट आए हैं उसको आप पचा पाई हैं, आप लोग क्या सोच रहे हैं यहाँ पे?
एकदम बहुत गलत हुआ, बहुत परेशान है इस चीज को लेकर, माइंड डिस्टर्ब लग रहा है। लोगों ने क्या दिया हम लोगों के, यहाँ से इतने अच्छे अच्छे परफेक्ट नेता खड़े हुए थे जिनको हम लोग इतना जानते पहचानते हैं, अपना दुख दर्द कहते हैं, वो हम लोग के आंसू पोंछते हैं, वो खड़े हुए, उनका कुछ हुआ ही नहीं।
लेकिन जनता ने जो वोट दिया है डेमोक्रेसी में तो यही होता है ना, लोकतंत्र में कि भाई
प्रजातंत्र में यही होता है, डेमोक्रेसी में पता है जनता का, जनता के लिए जनता का है, पर कहाँ जनता का है, कुछ भी तो नहीं दिख रहा है।
यहाँ पर बहुत सारे युवा भी हैं, उनसे बात करते हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत मुस्लिम युवाओं ने भी इस बार भाजपा के लिए भी वोट दिया है, आप लोग क्या सोचते हैं?
मेरा नाम मोहम्मद सैफ है। मेरा मानना है सर, ये जो जिस तरह से देखा जाए कि मतलब एक तरफा वोटिंग हो गई है, ऐसा मतलब लग नहीं रहा था जिस तरह से चुनाव आया, लोगों ने सोचा कि मतलब वोटिंग तो होगी लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक तरफा वोटिंग हो गई।
तो कई बार होता है कि आप जो एक वेव होती है उसको आप समझ नहीं पाते हैं और लोगों ने वोट दिया है खुल के?
खुल के तो दिया है लोगों ने, दिया है ये मानना है खुल के दिया है लोगों ने, लेकिन जो एक तरफा वोट हो गया सर उसका तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या नाम है आपका?
मोहम्मद रिजवान।
रिजवान भाई क्या क्या चल रहा है अभी दिमाग में?
जी देखिए वोट जो रिजल्ट जो है ना तो वो आ चुका है बस। बहरहाल बात ये है कि जैसा अभिषेक मिश्रा जी ने विकास किया था विकास वैसा ही होना चाहिए बस।
बहरहाल हम हमारे साथ कुलसुम मुस्तफा भी हैं वरिष्ठ पत्रकार। कुलसुम जी सबसे पहले बताइए कि इस चुनाव को आप कैसे देखती हैं?
जर्नलिस्ट के लिए खास तौर पे जो पॉलिटिकल पंडित्स होते हैं उनके लिए ये बड़ा मुश्किल चुनाव था क्योंकि बहुत सी आहटें जो होती हैं वो उन्हें मिली नहीं और बहुत से इंडिकेशन, वोटर साइलेंट रहा, बहुत चुप रहा इस बार। लेकिन एज अ जर्नलिस्ट हम लोगों ने जो थर्ड आई से जो उसकी तीसरी आंख होती है उससे हमने ये ज़रूर देखा था कि समाजवादी पार्टी के लिए चीज़ें बहुत आसान नहीं होंगी। तो ये रिजल्ट अपने आप में बहुत ही शॉकिंग रहा, नॉट ओनली फॉर द माइनॉरिटी बट ऑल्सो फॉर पीपल हु हैड बीन डूइंग द एनालिसिस। और इसकी क्या वजह है मुझे मुझे आज जो ये इतना हाई परसेंटेज आया है उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं दो चीज़ें हुई हैं। बीजेपी ने अपने पूरे कैंपेन में दो चीज़ें की, उन्होंने मुसलमानों को टिकट नहीं दिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मुसलमानों के बीच नहीं गए, उन्होंने मुसलमानों को समझाया भी और टिकट भी नहीं दिए। इससे उनके दो काम हुए, टिकट ना देने से पोलराइजेशन हुआ वोट्स का क्योंकि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसको भी लगता था कि हमें लोग बांध देते हैं हर चीज़ में, और उनके पास जाने से उनको एक लगा कि हमारे ये हमारी बात सुनते हैं। उन्होंने अपने एक तीर से दो निशाने किए।
इसमें मैं दो बातें अगर मैं कह पाऊँ कुलसुम, अगर मुझे याद है अमित शाह से ये सवाल कई बार पूछा गया, ये कोई नया सवाल नहीं है, लेकिन वो हमेशा कहते हैं कि भाई टिकट देने से एम्पावरमेंट नहीं होता है, आप समुदाय के लिए क्या काम करते हैं उससे एम्पावरमेंट होता है। और दूसरी बात जो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों ने बताई वो ये कह रहे हैं कि भाई युवाओं ने इस बार वो इतनी कम्युनल पॉलिटिक्स से कि बीजेपी का डर दिखाकर, बीजेपी आ गया क्योंकि हवा आ गया है, इसलिए कई युवाओं ने भी इस बार भाजपा को वोट दिया है, जरूरी नहीं कि वो सामने आए, इस पर क्या कहेंगे आप?
बिल्कुल सही आपने कहा क्योंकि जो उनके आंकड़े आए हैं वो तो साफ है कि बगैर मुसलमानों के ये आंकड़े आ ही नहीं सकते थे। और मुझे लगता है उन्होंने बहुत एक स्ट्रैटेजी पूरी तौर पे, मोदी ने हर फेज में एक स्ट्रैटेजी यूज़ की है और वो स्ट्रैटेजी ये थी कि उन्होंने बजाय मैन फोक को अपनी तरफ करने को औरतों का रुझान अपनी तरफ खींचा, उन्होंने औरतों को कुछ ऐसी चीज़ें बताई जैसे ट्रिपल तलाक है।
कई लोग यही पूछ रहे हैं कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उन्होंने क्या खुलकर वोट दिया है भाजपा के लिए?
देखिए अभी बहुत जल्दी होगी इस बात को कहना क्योंकि डेटा जब तक आपके पास नहीं है, लेकिन ये सच है कि मुसलमानों ने अपना दिल बड़ा किया, उन्होंने अपनी सराउंडिंग्स को बेहतर करने का इनको एक चांस दिया है।
सईद हुसैन साहब क्या कहेंगे आप कुछ?
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी जो मेजॉरिटी से आई है उनको, पूरी पार्टी को मैं बधाई देना चाहता हूँ, और इसमें वो माने या ना माने बहुत बड़ा योगदान मुसलमानों का भी है, उन्हीं ने वोट दिया है, खासतौर पर युवाओं ने और महिलाओं ने। जैसे कि उन्हीं ने किसी भी मुसलमान कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया, अभी उनके पास एक बहुत अच्छा चांस है कि उनके पास एक बहुत बड़ा मुसलमान लीडर है जिसका नाम है मुख्तार अब्बास नकवी, वो वाइस प्रेसिडेंट भी है बीजेपी का, उसको क्यों नहीं नॉमिनेट कर देते हैं?
तो ये जो सोच है सर कि मुसलमान जो है भाजपा को वोट नहीं देता है, पर क्या कहेंगे आप?
देखिए दिया है तभी तो आया है, 80% उनके पास 324 सीट्स कैसे आ गई, नहीं आ सकती है। और अगर मोदी जी को अमित शाह जी को भारतवर्ष में राज करना है इस स्लोगन के साथ सबका विकास, दिल बड़ा करें, मुझे 25 साल तक बीजेपी को कोई हिला नहीं सकता सत्ता से।
उत्तर प्रदेश के मुसलमान क्या सोच रहे हैं आने वाली सरकार के बारे में, ये जानने की कोशिश कर रहे थे विनीत खरे। और अब रुख करते हैं पंजाब का। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को आज विधायक दल का नेता चुन लिया गया और उन्होंने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी अकाली दल गठबंधन को हराकर बहुमत हासिल किया है। राज्य की 117 सीटों में से 77 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा,
हम गवर्नर साहब को मिलके आए हैं और हमने गवर्नमेंट बनाने का उनसे दरखास्त करके आए हैं कि हमारी गवर्नमेंट बननी चाहिए। वी हैव स्टेक्ड आवर क्लेम फॉर फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट एंड डेट फिक्स हो गई है 16 की सुबह, वो टाइम बता देंगे आप।
सर आप दिल्ली कब जाएंगे? सर
मैं दिल्ली जाऊंगा 14 को।
तो ये पंजाब के अगले मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बता रहे थे कि 16 तारीख को उनकी सरकार बन जाएगी, जैसा कि गवर्नर ने उनसे कहा है। और अब आइए रुख करते हैं कुछ ऐसे राज्यों का जहां पर स्पष्ट बहुमत न होने की वजह से जो सरकार बनाने की खींचतान है वो तेज हो गई है, काफ़ी रस्साकसी चल रही है। पहले जिक्र मणिपुर का। मणिपुर में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। 28 सीटों के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। यहाँ बहुमत के लिए 31 सीटें चाहिए और 3 सीटें जुटाना भी कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, यही सवाल मैंने पूछा गुवाहाटी में स्थानीय पत्रकार दिलीप शर्मा से।
देखिए, कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी बनकर सामने आई है। उसको जो 60 सीटें हैं मणिपुर में, उसमें 28 सीटें कांग्रेस को मिली है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के पास जो 3 उनको समर्थन चाहिए, जो 3 विधायकों का, वो मिलना मुश्किल दिख रहा है। और बीजेपी के पास भी, मेरी बात हुई है बीजेपी के स्पोक पर्सन से, डॉक्टर रंजन से, उन्होंने मुझे कहा है कि भाई बीजेपी के पास समर्थन है और वहाँ जो एनपीपीएफ है, जो नागा पीपल्स फ्रंट है, जिसके साथ बीजेपी का पहले से ही गठबंधन रहा है, नागालैंड में उसकी सरकार है, बीजेपी वहाँ जूनियर पार्टनर है, उनके 4 विधायक हैं, एक पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पी एस संगमा के जो पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी, उसके 4 विधायक है, वो भी जो नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस बना था अमित शाह जी के देखरेख में, पूर्वोत्तर में जो एक अलायंस बना जिसमें बीजेपी के साथ वो एनपीपीएफ भी है, तो इस तरह से मिलकर बीजेपी के पास भी अभी 30 समर्थन है। कुल मिलाकर 21 उनके खुद के विधायक हैं और बाकी उन्होंने 9 लोगों का समर्थन होने का दावा कर रहे हैं। मेरी अभी और भी बात हुई है कुछ लोगों से, तो अभी तक सरकार बनाने के लिए या गवर्नर की तरफ से किसी को भी कॉल नहीं किया गया है। अभी सिर्फ वहां कवायद चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले बयान आया था बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव जी का, उन्होंने भी ये दावा किया है कि उनके पास समर्थन है और वो जल्दी राजभवन जाएंगे।
राम माधव शायद वहीं मणिपुर में इस वक्त मौजूद हैं, इम्फाल में, और ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी हर तरीके से कोशिश कर रही है कि सरकार उन्हीं की बने, लेकिन कांग्रेस के लिए ये इतना मुश्किल क्यों हो रहा है, उनके लिए तो सिर्फ 3 ही विधायकों की जरूरत है।
देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि भाई एनपीएफ और एनपीपी, इनके जो 4-4 जो इनके जो विधायक जीत कर आए हैं, कुल ये 8 विधायक पहले से ही एनडीए के साथ जुड़े हुए हैं। सिर्फ एक विधायक ऐसा है जो निर्दलीय है, जो उसका समर्थन बीजेपी को चाहिएगा। बीजेपी के पास 30 तो हो जा रहे हैं, लेकिन एक उनके पास भी शॉर्ट है, और निर्दलीय जो विधायक जीता है वहाँ, वो अभी किसी भी पार्टी के लिए अभी तक किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया है। यहाँ कई सारे मुद्दे हैं। अगर कांग्रेस सरकार बना नहीं भी पाएगी और बीजेपी इस तरह से अगर जोर लगाकर बना भी लेती है, तो इसके आगे चलकर कितने दिनों तक टिकेगी और क्या रहेगा, इसको लेकर बड़ी अनिश्चितता बनी रहेगी। क्योंकि ये जो नागा समझौता जो हुआ है चरमपंथी संगठन एनएसएन के साथ, उसी पार्टी के समर्थन के ये एनपीएफ वाले विधायक है, और इसका सरकार पर दबाव रहेगा। 2012 के चुनाव में बीजेपी का एक भी विधायक नहीं था, वो बीजेपी 21 विधायक जीतने में समर्थन हुई है। तो उसमें जो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मोदी जी ने खुद और राजनाथ सिंह जी ने, बड़े बड़े बीजेपी नेताओं ने मणिपुर के लोगों को भरोसा दिलाया था कि भाई मणिपुर की इंटीग्रिटी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। तो ये आगे चलकर देखिए, एनपीएफ का सपोर्ट ले भी लेती है और बीजेपी अगर बना भी लेती है, तो बड़ा आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए भी।
दिलीप, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि कब तक उम्मीद की जाए कि वहां पर सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
देखिए, आज तो रविवार का दिन था, खैर आज सारा दिन ही वहाँ कांग्रेस वाले अपनी मीटिंग कर रहे हैं, बीजेपी के लोग अपनी तरीके से मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कल दोपहर तक, 2 बजे से पहले पहले एक क्लियर छवि आ जाएगी कि कौन पार्टी सरकार बना रही है।
गुवाहाटी से स्थानीय पत्रकार दिलीप शर्मा बता रहे थे कि मणिपुर में सरकार के गठन की जो प्रक्रिया है वो इस वक्त किस हाल में है और जो राजनीतिक दल हैं वो किस तरह की रस्साकशी से जूझ रहे हैं। कमोबेश यही स्थिति गोवा की भी है। गोवा में किसी भी दल को बहुमत स्पष्ट नहीं मिला है। यहाँ की 40 विधानसभा सीटों में 13 पर बीजेपी और 17 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है। ऐसे में विधायकों को लेकर जोड़ तोड़ शुरू हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बीजेपी एक बार फिर मनोहर पर्रिकर, जो इस वक्त देश के रक्षा मंत्री हैं, उनको गोवा की कमान सौंप सकती है। राज्य में सत्ता की चाबी छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों के पास है और उनकी पसंद हैं मनोहर पर्रिकर। वैसे भी निवर्तमान मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकर चुनाव हार गए हैं और इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने अब से बस कुछ ही देर पहले बात की संदेश प्रभुदेसाई से, जो वहाँ स्थानीय पत्रकार हैं।
एक तो बात ऐसी है कि गोवा में कांग्रेस उभर के आई है और उनके 17 विधायक है 40 की विधानसभा में, और दूसरी बाजू से भारतीय जनता पार्टी जो है वो 13 पे है, तो कुल मिलके ये 20 होते हैं और बाकी जो लोग हैं वो 10 है। वो 10 लोगों के बिना कोई भी सरकार बना नहीं सकता, ऐसी परिस्थिति है। इसमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस भी हो गई तो भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने बताया कि वो सरकार बनाएंगे, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पूरे विधायक सुबह में मिलके इतवार को सुबह में मिलके उन्होंने एक रिजोल्यूशन भी दिया कि मनोहर पर्रिकर जो रक्षा मंत्री है उन्हें अमित शाह से अपील करके उन्होंने कि उन्हें गोवा में वापस भेज दिया जाए और उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो उसके ऊपर अभी अमित शाह की निर्णय की सब राह देख रहे हैं और मनोहर पर्रिकर उसके बाद जाके अपना क्लेम करेंगे, सरकार बनाने के लिए दावा करेंगे, ऐसा बीजेपी के भाजपा के कैंप में हो रहा है। दूसरी बाजू में कांग्रेस की जो कैंप है वो कांग्रेस की कैंप में उनकी सीएलपी लीडर कौन होगा, ये सीएलपी के लीडर के ऊपर उनकी बहस हुई और दिग्विजय सिंह और बाकी जो ऑब्जर्वर थे वो हर एक विधायक को मिले, पर्सनली मिले, और उसके बाद हमने सुना है कि वो बैलेट लेके सीक्रेट बैलेट लेके वहां वोटिंग हो गई कौन चाहिए इसके ऊपर, और उसकी उसके ऊपर बाकी के बाद और अभी तक कुछ नहीं हुआ है कांग्रेस के कैंप में।
तो ये थे संदेश प्रभुदेसाई गोवा से, स्थानीय पत्रकार जो बता रहे थे कि वहाँ सरकार बनाने की कवायद में क्या कुछ आज पूरे दिन हुआ है। और अब दिन भर में सुन लेते हैं खेल समाचार आदेश कुमार गुप्त से।
जी, सबसे पहले बात गोल्फ की। भारत के जाने माने गोल्फर एसएसपी चौरसिया ने इंडियन ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्होंने अंतिम राउंड में 1 अंडर 71 का स्कोर लगाया। ओवरऑल उन्होंने 15 अंडर 173 के स्कोर के साथ खिताबी जीत हासिल की। एसएसपी चौरसिया का ये तीसरा यूरोपियन टूर खिताब है। इत्तेफाक से तीनों ही खिताब उन्होंने भारत में ही जीते हैं। उनसे पहले भारत के जीव मिल्खा सिंह और अर्जुन अटवाल 3 यूरोपियन टूर खिताब अपने नाम कर चुके हैं। भारत के ही अनिर्बान लाहिड़ी संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे। उधर ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल वर्ग का फाइनल आज शीर्ष वरीयता हासिल चीन ताइपे की ताइजू यिंग और 5वीं वरीयता हासिल थाईलैंड की रथ चानोक इंतनॉन के बीच खेला जाएगा। फाइनल में पहुंचने से पहले ताइजू यिंग ने भारत की पीवी सिंधु को क्वार्टर फाइनल में हराकर बाहर किया था। दूसरी तरफ रथ चानोक इंतनॉन ने बड़ा उलटफेर करते हुए दूसरी वरीयता हासिल स्पेन की कैरोलिना मारिन को क्वार्टर फाइनल में मात दी थी। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल वर्ग का फाइनल शीर्ष वरीयता हासिल मलेशिया के ली चोंग वेई और चीन के गैर वरीयता हासिल शी युकी के बीच खेला जा रहा है। शी युकी ने सेमीफाइनल में 6वीं वरीयता हासिल चीन के लिंडन को हराकर बाहर का रास्ता दिखाया था। थोड़ी देर पहले ली चोंग वेई ने पहला गेम 21-12 से बहुत ही आसानी से अपने नाम किया। वहीं आज बारिश ने मेजबान न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच डोनेटेड में खेले गए पहले टेस्ट मैच के 5वें और आखिरी दिन ऐसा खलल डाला कि एक भी गेंद नहीं हो सकी और नतीजा मैच ड्रॉ समाप्त हो गया। इससे पहले कल न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट खोकर 224 रन बनाए थे। तो इस तरह से मुसीबत में फंसी दक्षिण अफ्रीका के लिए इंद्रदेवना देवता सहारा बनकर उभरे।
बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त खेल समाचारों के लिए। कार्यक्रम में अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है, तो आइए प्रमुख समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं वात्सल्य राय से।
बीबीसी समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम में वो नए हिंदुस्तान को देख रहे हैं। दक्षिण कोरिया की पूर्व राष्ट्रपति पार्क गुनहे ने पद से हटाए जाने के बाद अपने पहले बयान में कहा है कि उन पर लगे आरोपों के मामले में सच सामने आएगा। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगान ने नीदरलैंड से कहा है कि तुर्की के 2 मंत्रियों को वहां रैलियां नहीं करने देने के मामले में जवाब दिया जाएगा। इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा के करीब मलबे के ढेर के ढहने से कम 15 लोगों की मौत हो गई और कई लोग अब भी लापता हैं। उनकी तलाश के लिए अभियान चलाया जा रहा है। चीन के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीते साल की उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि देश की सुरक्षा को खतरे में डालने वालों को जेल भेजना था। नाइजीरिया की पुलिस के मुताबिक सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 2 संदिग्ध आत्मघाती महिला हमलावरों की मौत हो गई। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुनाया वात्सल्य राय ने और आज स्टूडियो संभाला राजेश चौहान ने। आपसे कल सुबह दिन भर नमस्कार भारत में फिर मुलाकात होगी। तब तक निखिल रंजन को सभी साथियों संग दीजिए अनुमति और देखते रहिए bbchindi.com। नमस्कार।